और क्या फरमाया, जिसने इस ऐसे मौके पर पीठ फेरी इल्ला ये कि जंगी चाल के तौर पर ऐसा करे या किसी दूसरी फौज से जा मिलने के लिए, तो वो अल्लाह के गजब में घिर जाएगा। बाज लोग अपनी वफादारियां बदलते हैं, कहते हैं दीन के काम करना है ना, कोई जरूरी है इनके साथ करें, किसी और जमात के साथ कर लेंगे, कभी नहीं कबूल करेंगे आपको वो। ये तो आपको वो बर्दाश्त करें जिन्होंने डे वन से आपको रखा है, वो आपकी गलतियां भी बर्दाश्त करेंगे और उनको आपसे मोहब्बत भी है। आप एक जमात से निकल के दूसरी में जाएं, आपने कभी सियासी वफादारियां बदलती देखी होंगी? लोटा कहते हैं लोग ऐसे लोगों को, कौन उन पर ट्रस्ट करेगा? याद रखिए, शादी हो जाए ना तो बस वही घर आपका, पहले सोच विचार के शादी करें, हो गई है अभी दरी जीना है, इसी घर में बस के दिखाओ। जब तक दीन के काम पे जुड़ने वाले खुद को इस कमिटमेंट पे ना रखें कि मैं अब अपना शौहर नहीं बदल सकती, मुझे पसंद है कि नहीं, उनको मैं पसंद हूं कि नहीं, मैंने इधर ही रहना है, इल्ला ये कि कोई हराम चीज नहीं है, छोटी मोटी आदतें चलती रहती हैं। इसी तरह दीन के नाम पर अल्लाह कहते हैं एक जमात से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, और ऐसे लोग बदनाम हो जाते हैं। वो लोग भी उनके बारे में पूछते हैं, सुना है ये क्या करतूत करके आए हैं, ये क्या कारनामा किया है? फिर वो कहते हैं तौबा शुक्र है आपके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, वरना पता नहीं हम इनको कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे देते। तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग अल्लाह के गजब में गिर जाएंगे, इसका ठिकाना जहन्नम होगा और वो बहुत बुरी जायबाज गश्त है। बस हकीकत है। अब यहाँ एक वाकया था, जब मुसलमान बदर में थे, हथियार तो थे ही कोई नहीं क्योंकि लड़ने का तो इरादा ही नहीं था, थोड़ी सी तैयारी थी। अब क्या हुआ कि मुसलमानों की गोलियां खत्म, हथियार खत्म, और नबी सल्लम को कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी हम किस चीज के साथ अपना दिफा करें? अल्लाह के नबी अपने हुजरे से निकले, जमीन से आपने एक मुट्ठी पकड़ी मट्टी की और आपने शाखतिल वजू कहकर वो मट्टी यूं फैलाई। अल्लाह ने अपनी कुदरत से वो मट्टी हर काफिर की आंखों में डलवा दी, और जब आंखें झपकी उनको कुछ नजर ना हुआ, घबराए, अपनी तलवारें छोड़ दी, घबरा गए ना, जो ही तलवारें उनके हाथों से छुटी वो मुसलमानों ने पकड़ ली, चंद सेकंड में मैदान जंग का नक्शा बदल गया। यही अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। बस हकीकत है कि तुमने इनको कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने इनको कत्ल किया, और ए नबी आपने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका, और मोमिनों के हाथ जो इस काम में इस्तेमाल किए गए तो ये इसलिए था कि अल्लाह मोमिनों को एक बेहतरीन आजमाइश से कामयाबी के साथ गुजार दे। यकीनन अल्लाह सुनने और जानने वाला है। कैसे गई? नबी का मौजदा था, उसकी कोशिश थी, अल्लाह है, देखिए बुलेट क्या है, अल्लाह के हुक्म से काम करते हैं, गोली चलती है तो अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह उस मट्टी के एक जर्रे को, एक छोटी सी पत्थरी को अगर बुलेट बना सकता है, तो क्या आज मेरी और आपकी इन बातों को अल्लाह नहीं पहुंचा सकता? मुझे और आपको अपना काम करना है। और आज मैं जब देखती हूँ ना कि एक बात इधर से निकलती है और कैसे अल्लाह के बंदे उसको ले लेके इधर उधर फैला देते हैं, हर साल अल्लाह ताला नई नई चीजें तोहफे में दे देता है, हर साल नया मीडियम, नया सोर्स, ये उससे भी आसान, ये उससे भी आसान। मैं तो बोल के यहां से चली जाती हूँ ना, और आपको पता है कितने लोग अलर्ट हो जाते हैं कि उन्होंने चंद घंटे के अंदर उस सब को एडिट कर करा के किस किस ग्रुप में देना होता है। तो मैं इस आयत को याद करती हूँ कि वमा रमैता इज़ रमैता, अल्लाह कहाँ किसी एक इंसान की ताकत है कि वो किसी तक बात पहुंचाए। बस अल्लाह का ये फैसला है कि तुम अल्फाज निकालो, फिर देखो अल्लाह कहाँ पहुंचाएगा। इखलास ले आइए, अल्लाह आपको ऐसे प्यारे साथी दे देगा कि वो आपके मिशन की तकमील करेंगे, जैसे अल्लाह ने अपने नबी के साथ किया। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें मोमिनों की आजमाइश हुई, अल्लाह ऐसे मौजज़ात दिखाता था जंगों में ताकि साथ काम करने वालों के दिल खुश हो जाए। फरमाया ज़ालिकुम वन्नल्लाहु मुहिनु कैदिल काफिरीन, ये मामला तो तुम्हारे साथ है और काफिरों के साथ मामला ये है कि अल्लाह इनकी चालों को कमजोर करने वाला है। इन काफिरों से कह दो अगर तुम फैसला चाहते हो तो फैसला तुम्हारे सामने आ गया, यानी मुसलमान जीत गए, अब बस आ जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर है, वरना फिर पलट कर अगर इसी हिमाकत को दोहराओगे तो हम भी इसी सजा को दोहराएंगे, और तुम्हारी जमीयत, तुम्हारे गिरोह ख्वाह वो कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, तुम्हारे कुछ काम ना सकेंगे। और बात यह कि वन्नल्लाह माल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों के साथ। इस जुमले को 3 बार अपने प्यारे प्यारे हाथों से लिख के स्टिकी नोट पे लगा लें, अन्नल्लाह माल मोमिनीन, अन्नल्लाह माल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों के साथ है। जिसको इस बात का यकीन हो जाएगा वो कभी भी इस रास्ते में आकर नाकाम नहीं होगा। असल मदद ईमान के साथ है, और ईमान है ही कोई नहीं, खोखला ईमान, दोगला ईमान, रंग बिरंगा ईमान, कटा फटा ईमान, तो मदद कहाँ से आए? अब अगले हिस्से में अल्लाह ताला फिर बताते हैं कि मुसलमानों तुम्हें अपनी तरबियत के लिए क्या करना है, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، یعنی یہ نہ کہو نو نو اٹس ناٹ پاسبل آئی کین ڈو دس. کوئی حکم آئے نا دین کا تو اس کو سنتے فوراً کہا کریں ٹھیک ہے اللہ جی، اوکے ٹھیک ہے، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، آئی لائک دس. جب آپ کے اندر سے یہ آوازیں آئیں گی نا تو اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا. اور کوئی کم سن کے کہ اوف سو ہارڈ سو مشکل، اللہ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا لیتا ہے، تو یاد رکھیے نو سے نو بڑھ جاتی ہے، پھر وہ سیز ہو جاتی ہے چیز، لاک ہو جاتی ہے، پھر وہ سٹک ہو جاتی ہے سکرین، پھر آپ اس کو کوشش بھی کریں گے تو وہ نہیں ہلے گی. اس طرح برین سٹک ہو جاتا ہے جب ہم نو کہتے ہیں، پھر اللہ توفیق چھین لیتا ہے. پھر فرمائیں لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے، یعنی بظاہر سنتے ہیں لیکن ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنوا بھی دیتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. اس کو ہائی لائٹ کریں، اس میں آپ سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. ماشاءاللہ آپ سب قرآن سن رہے ہیں نا، بولیے سن رہے ہیں نا، آ رہے ہیں نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر خیر ہے. اللہ نے اپنا یہاں ایک قانون بتا دیا، جس بندے میں خیر ہوتی ہے نا اللہ اس کو سنواتا ہے، اور جس میں خیر نہیں ہے نا اللہ اس کو نہیں سنواتا. بالکل اس کو ایسے ہی سمجھیے، اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے لیکن ہم صرف اپنے سمجھنے کے لیے لے لیتے ہیں. کہ آپ دیکھیے کسان کس مٹی پہ محنت کرتا ہے جس کے اندر سے فصل اگنے کی امید ہوتی ہے. زرخیز مٹی پہ کسان تھوڑی بھی محنت کرے گا نا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہاں پہ فصل اگے گی. کیا بنجر اور پتھریلی زمین پہ کوئی کسان محنت کرتا ہے؟ بیوقوف ہوگا نا. تو یہ تو ایک کسان تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو الحکیم الحاکم اور دلوں پہ نظر رکھنے والا ہے، اس کو بھی پتا ہے کس کا دل زرخیز ہے. اس لیے اللہ نے جس کے اندر خیر دیکھی نا ان کو سنوایا. بعض لوگ کہتے ہیں ہائے ابو جہل بےچارا مارا ہی گیا، تو اس لیے مارا گیا کہ اس میں دلوں میں تیل نہیں تھا. اگر ابو جہل میں تھوڑی سی بھی خیر ہوتی نا، کم از کم اللہ تعالیٰ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کی مہلت دیتا، وہ بدر تک جاتا. دلہ بن ابی میں خیر کتنی تھی، چلے کلمہ نام کا تو پڑھ لیا، غزوہ تبوک تک اللہ نے اس کو موقع دیا، جب نہ سمجھ آئی تبوک کے واپسی پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت بڑی خبر ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر کچھ رکھا ہے. اب آپ کو آج ایک سسپنس لگ جانا چاہیے، اللہ میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. اس کتاب کے ذریعے اللہ آپ کی سکلز کو نکلواتا ہے. جیسے بارش ہوتی ہے نا تو اس کے بعد زمین سے سبزہ اگتا ہے. بعض جب آپ دیکھیے مشکل حالات آتے ہیں، جیسے اب آپ 2.5-3 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں، مشکل ہے لیکن اس مشکل کے بعد آپ کا ٹیلنٹ باہر آ رہا ہے. آپ کو خود پتا چل رہا ہے کہ آپ نیچے بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ 2-2.5 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں. جب مشکل پڑتی ہے تو سمجھ آتی ہے، جیسے کبھی زلزلے آتے ہیں نا تو اس کے بعد وہاں سے اندر کی مٹی باہر اور باہر کے اندر چلی جاتی ہے. سیلابوں میں ایسی مٹی آتی ہے، زمینیں پھر فرٹائل ہو جاتی ہیں، اندر سے مائنس نکل آتے ہیں زلزلوں کے بعد. تو یہ دین کے لیے اس وقت جب محنت کر رہے ہیں نا، یہ رائے گاہ نہیں جائے گی. آپ کو اب وہ جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں نا اور ہوں گی آگے جا کے، یہ آپ کی زندگی کا رخ بدل دیں گی. اور میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگوں میں اتنی خیر ہے کہ ان کو آج خود بھی نہیں پتا. اور قرآن پڑھنے کے بعد جو سکون آتا ہے نا، وہ اس کی وجہ کیا کہ ہمارا وہ خیر ڈسکور ہوتا ہے. آپ کو اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا میں اتنا کچھ کر سکتی تھی، میں نے تو اتنا تھوڑا کیا. آج میرے اندر انرجی ہے. آپ ہی میں سے کسی نے کل کہا کہ میں نے 5 سال بعد اپنے اندر وہ پھرتی اور چستی دیکھی ہے جو میری کھو چکی تھی. ڈپریشن، پریشانیاں، حالات میں ہماری سب خوبیاں چلی جاتی ہیں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اگر اللہ میرے میں کوئی خوبی ہے تو اس کو اپنے راستے میں لگا لے، اللہ مجھے ضائع نہ کرنا. حضرت حاجرہ کی یہ دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں ضائع نہ کرنا. تو اپنے لیے بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہ کرنا، لیکن یاد رکھیے نو نہیں کہنا. جب نو کہہ دیں گے تو ختم. اللہ کہتے ہیں کہ تم کیا کہو. اب اگلی بہت ہی پیاری آیت ہے، یہ آیت تدبر بھی اس پارے کی ہو سکتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. ارجنسی دکھاؤ، فوراً شروع ہو جاؤ. یس لبیک، آئی ایم ہیئر، آئی ایم پریزنٹ. جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. یہ بتائیے کہ جب صبح یہاں لبیک کہتے ہیں تو دل سے کہتے ہیں کہ بس زبان سے کہتے ہیں؟ دل سے. کل سے آپ نے جب لبیک کہنا ہے نا اس آیت کو سننا ہے, سوچنا ہے, کہنا یس اللہ آئی ایم ہیئر, اور ساتھ اسمائل دیں. آپ یہاں دیکھ کے نہیں اسمائل کریں گے, آپ اوپر دیکھ کے اسمائل کریں گے. آپ کو کیئر بھی نہیں رہے گی, ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ آپ کی ویلیو پہچانتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے آپ کو پرفیکٹ اٹینڈنس کا کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ نہیں, انہوں نے آپ کی ویلیو پہچانی کہ نہیں پہچانی, آپ کو وقت پہ آنے کا کوئی سرٹیفکیٹ ملا کہ نہیں ملا. آپ اوپر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے نکلی اور آ گئی. اور جو ایک دفعہ اللہ کے لیے لبیک کہتے ہیں, اللہ اس کے لیے ہزاروں دروازے کھول دیتے ہیں. کہا کس چیز کی طرف ہو؟ جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. اتنا جامع جملہ یہ, اس کی تفسیر اس وقت کر نہیں پاؤں گی, ضرورت بھی نہیں ہے, آپ کو انشاءاللہ اس کی تفسیر بھیجیں گے. لیکن حقیقت ہے اس وقت امت وسط کو اس آیت پر عمل کی ضرورت ہے. وہ کیسے کہ کس طرح زندگی کس میں, دو اس کی مختلف تفسیریں ہیں. دیکھیے پہلی چیز کیا ہے کہ جب کوئی قوم جہاد کا انکار کرتی ہے نا تو دشمن اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. جب دشمن کسی کے اوپر غالب آتے ہیں نا تو اس قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. اور جب دشمن کو اس کا یقین ہوتا ہے کہ ایک کال پہ لیڈر کی پوری قوم نکلنے کو تیار ہے تو وہ دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. جہاد میں قوموں کی زندگی ہے. کیسے؟ اپنے دفاع کے لیے, کہ ہم زندہ قوم ہیں, ہم کوئی مردہ نہیں ہیں, ہم تمہاری ان دھمکیوں کے جواب میں ڈر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں, تو بھی زندگی ہے. اور ایک دفعہ آپ ہتھیار دکھائیں. دیکھیے اسلام کا ایک مزاج سمجھ لیں, ہتھیار چلانے نہیں ہیں, ہتھیار دکھانے. یہ آگے سورۃ توبہ میں ڈیٹیل سے آئے گی بات. اسلحے کا اظہار کرو, نمائش کرو, چلانا نہیں ہے. آج اپوزٹ ہے, گولیوں سے بچھاڑ اور بم بلاسٹ اور دس اینڈ دیٹ. تو پہلی چیز کیا پتہ چلی؟ کہ اللہ آپ کو بلاتا ہے. دوسری چیز یہاں دعوت کو قبول کرنا کس چیز کا ہے؟ قرآن. یہ قرآن میرے اور آپ کے دل کی زندگی ہے. آپ کو ابھی اس کا احساس ہو گیا تو بہت اچھا, انشاءاللہ باقی ابھی 21 پارے ہیں اس میں ہوگا. یہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اسی شوق اور ذوق سے سنتی رہی نا تو ان 30 پاروں کے بعد آپ خود کہیں گے کہ دس بک از مائی آکسیجن ٹینک, میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی. اس نے مجھے اس ایک مہینے میں دوبارہ زندہ کر دی ہے. میں اسپرچولی بھی اب زندہ ہوں, میں فزیکلی بھی اب زندہ ہوں. اس طرح آپ چلیں گے. پھر اسی طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا, یہ بھی امت کی لبیک ہے. تو ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اگر یہ ہدایت کی کال ہماری زندگی میں آئی ہے تو ہمیں اپنے دل کے دروازے کو کھولنے کی توفیق دے. دیکھیں ہدایت کا دروازہ ہمیشہ نہیں کھلا رہے گا. کہتے ہیں کہ اپرچونیٹیز ڈزنٹ ناک ٹوائس. ایک اپرچونیٹی آ جائے آپ اس کو لے لیں گے نا تو ٹھیک ہے, اور اگر آج آپ کو ذرا سا بھی احساس ہو رہا ہے نا کہ دل کھل رہے ہیں تو مصلحت کے نام پہ اس کو بند نہ کریں, کسی ان سین فیئر کی بنیاد پہ اس کو بند نہ کریں. ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. پھر اللہ بیریئر بن جاتا ہے. جب ہم اوکے نہیں کرتے نا تو پھر اللہ کہتا ہے میں نہیں آنے دوں گا. ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ بندے کو رب بلاتا ہے اور بندہ نہیں آتا. رب کسی بندے کی صورت میں تو بلاتا ہے نا, وہ آپ کی دوست, وہ آپ کا کوئی فیملی ممبر, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایک وقت ہے اللہ بلاتا ہے اور ہم نہیں آتے, اور ایک وقت ہے کہ اللہ پھر کہتا ہے میں آنے ہی نہیں دوں گا. یہ ہے یحول بین المرء وقلبہ. دعا کیجیے یہ مہر نہ لگے. اللہ کہتا ہے تمہیں تو میں نے آنے ہی نہیں دینا اپنی طرف. تو یہ سزا ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور فرمایا آج نہیں آؤ گے تو کیا بڑی بات ہے, اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. کتنا اچھا آج خوشی سے آ جاؤ, نہیں ہوگے تو انہ الیہ تحشرون. تو کل تو جانا ہی ہے نا اس کے پاس, آج چلے جائیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا, اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ اتنا ناراض ہوگا لوگوں سے کہ نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو اللہ ان کی نہیں سنے گا. اسی طرح سنتوں کو پامال کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کی بنیاد پہ جب سزا دیتا ہے تو صرف ان کو نہیں دیتا جو ایسا کام کرتے ہیں, بلکہ ان کو بھی پکڑ لیتا ہے کہ جو یہ کام کرتے تھے اور خاموش تھے. تو تبلیغ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اللہ کے عذابوں کو روکنے والی چیز ہے. بس کرو ازن تم قلیل و مستدفون فی الارض. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے, زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا, تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں. दावत के आगाज में यही हालात होते हैं। दीन की कोई मूवमेंट चलती है, आगाज में इंसान तनहा होता है, थोड़ा होता है, लोग भी उसको कोई लिफ्ट नहीं कराते। फिर अल्लाह ने तुमको जाए पनाह मुहैया कर दी, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें अच्छा रिस्क पहुंचाया, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। ये शुक्रगुजारी क्या है कि अपनी सलाहियतों को अल्लाह के दीन के लिए लगा दो। और हकीकत है कि बड़ी कुर्बानी के साथ बड़ा अजर है। इसलिए फरमाया, लोगो जो ईमान लाए हो, जानते बूझते अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत न करो, अपनी अमानतों में गद्दारी के मुर्तकिब न हो जाओ, और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें हकीकत में सामान्य आजमाइश है और अल्लाह के पास अजर देने के लिए बहुत कुछ है। अल्लाह अकबर। फिर देखिए वही टची टॉपिक आ जाता है कि जिन चीजों में खोए हुए हो, अल्लाह के दीन में खयानतें क्या हैं, उसका हक अदा ना करना, हर बात पे छुट्टी, लेट आना, आज नहीं आ सकती। मैं अक्सर सोचती हूं कि अल्लाह के दीन के काम को आप एक बच्चे से सोचिए, आपका बच्चा, फिर एक और बच्चा हो गया, क्या नए आने वाले बच्चे की वजह से आप पुराने बच्चे को छोड़ देते हैं? टाइम तो लेते नया बच्चा ज्यादा, लेकिन पुरानों का खिलाना पिलाना मां करती है, करती के नींद जरा और कम कर लेती है, एक्टिव ज्यादा हो जाती है, फुर्ती आ जाती है। आप जो माशाल्लाह 3-4 बच्चों की माए हैं, आप खुद फील करेंगी, शादी से पहले आप हो सकता है पत्ता भी नहीं तोड़ती थी, तो अब भाग भाग के काम करती है ना। तो जब हम अपने बच्चे को नहीं छोड़ते तो दीन को कैसे छोड़ते हैं? और दीन का काम हो गई तब जब दीन हमें अपने न्यू बॉर्न बेबी जैसा हो। अब देखिए नया बच्चा ज्यादा तवज्जो लेता है पिछले बच्चों से, जब अपने दीन को न्यू बॉर्न बेबी समझेंगे ना, तो फिर आपको कोई कहेगा नहीं उठो रो रहा है इसको दूध पिलाओ, आप खुद रातों को उठ उठ के जागते हैं कि इसको दूध की जरूरत है, इसको चेंज करना है, इसके पेट में दर्द है। ऐसे ही माएं बच्चे को टटोलती रहती है, उस गरीब को सोने दो, देखिए ठीक है ये सो रहा है, ये अच्छा पहले दूध पीता है, ये पीता बहुत है, उठता रहता है, आज ये उठ क्यों नहीं रहा, फिर माँ परेशान है, फिर उसको सो सो के जगा जगा के उठाएगी सही सो रहा है कि नहीं सो रहा। वो एक जोक है ना कि एक नर्स ने किसी मरीज को सोते से उठाया और कहने लगी कि उठिए वो मैं आपको नींद की दवा देना भूल गई। तो बस माएं इतनी केयरिंग होती है अपने बच्चों के मामले में, वो यही कुछ करती है। अब आप देखिए कि जितना वक्त आपने उसको दिया उसका नतीजा क्या निकला, उतना सेंसिटिव हो गया। आज भी आप पाकिस्तान में अपने घरों में आने वाली मासियों के बच्चे कभी देखा करें, यख सर्दियों में उनके बच्चे बाहर खुले फ्लोर में फिर रहे होते हैं और वो अंदर आपके बर्तन धो रही होती है, उनको कुछ नहीं होता। और हमारे चुन्ने मुन्ने यहां से इतने लिपटे लुपटे जाते हैं, उनकी नाक फौरन बहने लगती है, इसी में से निकल कर बाहर जाते हैं। माल को इतना वक्त दे दिया, औलाद को इतना वक्त दे दिया, अल्लाह कहते हैं अब अपने दीन को इतना वक्त दो। जितना बड़ा हक है उतनी बड़ी कुर्बानी है, इसलिए फरमाइन आजमाइशों में पूरे उतरो। होगा क्या, आयत को नोट कीजिए, बहुत ही प्यारी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम खुदा तरसी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कसवटी वहम पहुंचाएगा। अंदर एक क्राइटेरियन कायम हो जाता है आपके, व्हाट आई एम डूइंग इज राइट और रॉन्ग, ठीक कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, किस तरह कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, आपको खुद पता चलेगा आपको क्या करना है। सिर्फ अल्लाह से आज से ये दुआ शुरू कर दे कि अल्लाह ये फुरकान दे। और आपको पता है कि गज़वे बदर को यौमुल फुरकान कहते हैं, हक और बातिल का फर्क मिट गया, पता चल गया कि हक हक है, बातिल बातिल है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम डरते जाओ मेरे से, मैं तुम्हें बताऊंगा तुमने क्या करना है, और तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर करूंगा और तुम्हारे कसूर माफ कर दूंगा, और अल्लाह ताला बहुत बड़ा फजल फरमाने वाला है। कुछ लोगों ने औलाद और माल की कुर्बानी की तो ये दीन हम तक पहुंचा, तो लिहाजा सारा मुआशरा नहीं, कुछ लोगों को तो कुर्बानियों की सतह पर जीना ही पड़ेगा। और जितना आप आज कुर्बानियां देंगे, कल आने वाला दौर आपको उतनी दुआएं देगा। याद रखिए दुआएं सिर्फ कुर्बानियां करने वाले लेते हैं। कुछ लोग हैं वो सारा दिन पीछे फिरते हैं, हमारे लिए दुआ करें, ये करें, उस दुआ की उसकी करें, करें जरूर करें। और कुछ लोग हैं वो आपको कहते हैं हम आपको रात को दुआ देते हैं, हम तहज्जुद में देते हैं, हम करवटों में देते हैं, हम रात को देते हैं, भाई हम तो आपको जानते नहीं, नहीं आपके जरिए हमें ये चीज मिल गई। इंसानों को लोग दुआएं देते हैं, आप सोचिए सच्ची दुआएं आपको तब मिलेंगी जब आप इंसानियत के लिए तड़पेंगे। बिलीव मी, जब शुरू में हमारा पेलटॉक रूम खुला तो अल्लाह के हुक्म से साथी साथ काम करते थे, तो हम लोग रीप्ले के तौर पे उस वक्त तो इतनी समझ भी नहीं थी, लेक्चर चला देते थे। तो एक दफा मुझे किसी सिस्टर का फोन आया मिड नाइट का, उन्होंने अपना वाक्य सुनाया। कहने लगी किसी वजह से वो जाग रही थी या कहीं सफर में थी, तो उन्होंने एक रूम खोला तो हमारा रूम खुल गया, तो उसमें वो कोई लेक्चर चल रहा था जिसने उनके दिल को छू लिया। और हर बंदे का कुछ ना कुछ होता है ना कभी दिल दुखा। कहती मैं बहुत रोई और फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद मुझे फोन किया, जानती थी, तो कहने लगी कि जिस वक्त मेरे दिल की ये हालत बदल रही थी तो मैं कह रही थी कि आप मेरा नाम लेके कहेंगी कि आप तो इस वक्त गहरी नींद सो रही होंगी, लेकिन आपको नहीं पता कि इस वक्त आपकी इस बात से मेरा कितना बड़ा मसला हल हो गया, तो फिर मैंने आपके लिए खूब दुआएं की। ये सच्ची मोहब्बतें अल्लाह के दीन से मिलती हैं। याद रखिए कि आज इस दुनिया में सिर्फ वही बंदा कामयाब है जिसने दूसरों को नफा दिया, वो लोगों से दुआएं लेगा। जो लोग आज आप और मैं देखें कितना माँ बाप बच्चों के लिए तड़पते हैं, किस्मत से दुआएं मिलती हैं, किस्मत से कदरदानी मिलती है। दिल में होगी कदर, कहते नहीं है बच्चे कि छोड़ो ऐसे माँ बाप ज्यादा खुश ना हो जाए। आप कहते अपने बच्चे हो ताकि आपको पानी पूछे, ताकि आपका बुढ़ापा अच्छा हो। बच्चे कहीं हैं, आप कहीं हैं, वो आप अकेले पड़े हैं। आप अल्लाह के बंदों की खिदमत कर लें, सारी दुनिया आपकी खिदमतगार बनने को तैयार हो जाती है। तो अल्लाह ताला यहाँ यही बात कह रहे हैं कि देखो तुम्हें अगर वाकई ये चाहिए कि अल्लाह तुम्हें कुछ दे तो काम करो। अल्लाह के नबी ने इसकी हद कर दी, हद कर दी। फिर दिल चाहते मैं हर साल दौरे कुरान में ये नियत करती हूँ कि अगले साल मैंने सीरत का दौर कराना है, शायद अल्लाह अगले साल ये कर ले, हम सीरत करें पूरे महीने में। मेरा अल्लाह रो रो के जाएंगे घरों में। हकीकत है कि मैं अल्लाह के नबी से वो मोहब्बत है ही नहीं। अगली आयतों को सुन ले, 13 साल अल्लाह का नबी जिसको आप अपनी जुबान में कह लें एक पांव पे खड़ा लोगों को बुला रहा है, कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, तन मन धन सब लगा दिए। शहर के बड़े बिजनेसमैन थे अल्लाह के नबी, लोगों को अगर $1 का प्रॉफिट होता था तो अल्लाह के नबी को $2 का होता था। विस्टम इतनी थी, ब्रेन अल्लाह ने इतना अच्छा दिया, इखलाक इतना प्यारा, लोगों में शोभा, ये सारी चीजें मजीद दौलत कमाने का जरिया बन सकती थी। ये सारी चीजें मक्का की सरदारी लीडरशिप मिलने का जरिया बनती थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने सबको एक तंदूर में फेंक कर एक ऑनर अपने लिए कबूल की कि नजीरम व बशीरा कुम फानजिर। पढ़ेंगे सूरत मुजम्मिल और मुद्दसिर में, खड़े हो जाइए और लोगों को आगाह करें। वो दिन जिस दिन आप पे इकरा बिस्मे रब्बी का की आयतें उतरी, वो दिन और ये दिन जिसका जिक्र इस आयत में आने लगा, आपने हक अदा कर दिया। रातों को दिनों को, इधर नहीं तो ताइफ, ताइफ नहीं गए तो रस्तों में, कभी अल्लाह के नबी जिन्नों के पास जा रहे हैं, कभी अल्लाह के नबी पत्थर खा रहे हैं, कभी चोटे खा रहे हैं, कभी ओझड़ियां अपनी कमर पे रख रहे हैं। एक ही मैसेज था कि लोग अल्लाह के बंदे बन जाओ, फला बन पाओगे। लेकिन आखिर वो दिन आ गया कि जब लोगों ने देखा कि अब हम इनसे जान छुड़ाते हैं। चंद लोग जमा हुए एक जगह, दारुल नदवा नाम की एक पार्लियामेंट थी, वहां कुफार के बड़े बड़े लोग जमा हो गए। कहने लगे इसका कुछ करो, दिन ब दिन इसके मानने वाले बढ़ते जा रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत आर की बात है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कत्ल कर दो, कोई कहता है इनको घर से निकाल दो, कोई कुछ, ये सारा वाक्य। उसने में एक शैतान, शैतान नजदी शेख की सूरत में व्हाइट दाढ़ी के साथ आके बैठ गया और वो लोगों को मशवरे दे रहा है कि क्या करो क्या ना करो। आई नायतों से देखते हैं, आप लिख लीजिए हिजरत की वजह बनने वाला मौका ये है जिसके इधर हुक्म है। वैस यम कुरुबी कल लसीना का फरू, वो वक्त भी याद करने के काबिल है जबकि मुनकरीने हक आपके खिलाफ तदबीरें सोच रहे थे, तुझे कैद कर दें या कत्ल कर डालें या जिला वतन कर दें। वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह ताला अपनी तदबीर कर रहा था, और अल्लाह ताला सबसे बेहतर है तदबीर करने वाला। जब इनको हमारी आयात सुनाई जाती थी तो वो कहते थे कि हाँ सुन लिया हमने, हम चाहें तो ऐसी बातें हम भी बना सकते हैं। आपकी बातों का सहर लोगों के दिलों से हटाने के लिए ऐसी बातें करते थे, ये कौन सी कोई नई बातें करते हैं, हम भी कर सकते हैं, और ये तो वही पुरानी कहानी है जो पहले से लोग कहते चले आए। अपने ऊपर लेके सोचिए, हम भी कहते हैं दीन के नाम पे बड़े मसले हैं, बहुत आजमाइशें आती हैं, क्या कोई मेरे घर के बाहर घेराव करके खड़ा हुआ कि ये बाहर निकले तो इनको कत्ल कर दिया जाए। वजह क्या है कि ये हमारे तौर तरीकों पे तनकीद क्यों करते हैं और ये हमें बुरा भला क्यों कहते हैं। कभी सोचिए ऐसा हुआ, आज कोई जान लेने के लिए तो बाहर नहीं खड़ा होता, लेकिन आप अल्लाह के दीन की तरफ चले हर बंदा आपसे हक लेने के लिए तो खड़ा हो जाएगा। शोहर भी कहेंगे आप किधर जाने लग गई रोज, ये भी रमजान है, आ रहे हैं तो बहुत सिक्योर्ड है। अगर आपने इरादा कर लिया रमजान के बाद भी आने का तो फिर देखिए हर दिन कई हकदारों को छोड़कर आएंगे घर। कोई कहेगा नाश्ता वक्त पे नहीं बन रहा, कोई कहेगा बच्चों की ड्यूटी किधर गई, कोई कहेगा घर बैठो बच्चों को पालो। जो ही हम दीन का काम करते हैं ना, उन सब लोगों को हकूक याद आ जाते हैं जो आम दिनों में हमसे खिदमत भी नहीं लेते। कई घरों के बुजुर्ग मैंने देखे वो खुद काम करना पसंद करते हैं, सास मिसाल है, वो कहती खुद करेंगे खुद खाएंगे पिएंगे। ठीक है बहू घर भी होती वो खुद ही करती हैं, जू ही बहू दीन के लिए निकलेगी तो सास के दिल में सात वसवसे आएंगे, मुझे बुढ़िया को छोड़ के घर से चली गई, देखो मैं पड़ी रहती हूँ, देखो मेरी दवाई किसको भी करनी मेरी परवाह नहीं है। वो बच्चे जो घर में पहले मेड के साथ चल रहे थे पल रहे थे और वो घर में भी नहीं थे, कोई नहीं पूछता उन्होंने क्या खाया उनका रंग कैसा है, आप दीन पे आए लोग आपके बच्चों का वजन करेंगे कम हो गए, इसकी आंखें देखेंगे ये पीली हो गई हैं, इसके सर के बाल की उतर गई तुमने क्लास शुरू कर दी, ये इसके हाथ क्यों पीले हो गए ना होने ये तुमने क्लास शुरू कर दी। तो तैयार रहें आप सब, जब अब अल्लाह के दीन के लिए उठेंगे और जितना बड़ा हक पेश करेंगे उतना प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, उतना रिएक्शन। तो यह एहतियात कर लीजिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी को मेरी जान लेने के लिए तो नहीं खड़ा। हम तो इतने सेल्फ पिटी का शिकार होने लगते हैं, फिर आंसू छम छम निकलते हैं, हमसे बातें नहीं सुनी जाती, हम लोगों की नाराजगी नहीं मोल ले सकते, मैं अपनी दोस्तों की अजनबीयत बर्दाश्त नहीं करती। तो सेंसिटिव लोग कभी दीन का काम नहीं करते। जब आपको एक धुन सवार होती है ना, आप काम कर रहे हैं आपको पता है 20 मेहमान आ रहे हैं, कई कट औरतों की उंगलियों पर लगते हैं उनको होश ही नहीं होती, याद कब आते हैं जब रात को बिस्तर पर लेटती हैं, हाँ छुरी का लग गई थी, हाय कट लग गया था। काम की धुन आपको बीमारी तकलीफ सबसे बेनियाज करती है। अगर मुझे और आपको इसका यकीन है ना कि आज उम्मत में इतनी जहालत है और हमने इसको दूर करना है, तो यकीन करें कि हम छोटी छोटी बातों से आजाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो हमें दूसरों का गम लगा दे। वैस कालू अल्लाहुम्मा इनका नहाजहुल हक मिन इंदिक, और वो बात भी याद है जो उन्होंने कही थी, किसने कही थी, अबू जहल ने, खुदाया अगर वाकई ये हक है तेरी तरफ से है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई दर्दनाक अजाब हम पर ले आ। इस वक्त तो अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करने वाला न था जबकि तो इनके दरमियान मौजूद था, और न अल्लाह का ये कायदा है कि लोग इस्तिग़फ़ार कर रहे हों और वो उनको अजाब दे। जब अबू जाहल मक्का से लश्कर लेके निकल रहा था, खाना काबा के पर्दे को पकड़ कर उसने ये दुआ की थी कि अल्लाह आज हम दो में से जो भी हक पे है यानी वो या मोहम्मद सल्लम, तो आज उसके हक में फैसला कर दे। इससे क्या पता चलता है, कई लोग गलत होते हुए भी खुद को हक पे समझ रहे होते हैं, और अल्लाह ने उसी की दुआ उसी के हक में लगा दी कि अल्लाह के नबी को फतह दी और कहा दूसरे को अल्लाह ताला मरवा दे या उस पर पत्थर बरसा दे, और अबू जहल का इंतकाल जो है वो बदर के मैदान में हो गया था। तो इससे अपनी फिक्र करनी है कि अल्लाह हमें हक पे रखना और हम हक के साथ ही रहें और कभी गलत पे होते हुए हम खुद को दुरुस्त न समझें। और इसमें एक और बात भी है कि जब तक अल्लाह का नबी किसी बस्ती में होता है वहां अजाब नहीं आता, और जब लोग इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं तो भी अजाब नहीं आता। लेकिन अब क्यों ना वो इन पर अजाब नाजिल करे जबकि वो मस्जिद हराम का रास्ता रोक रहे हैं, हालांकि वो इस मस्जिद के जायज मतवली नहीं, इसके जायज टेक केयरर तो सिर्फ अहले तकवा ही हो सकते हैं। मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते, बैतुल्ला के पास इन लोगों की नमाज क्या होती है, इल्ला मुकाम व तस्दिया, बस सीटियां बजाते और तालियां पीटते हैं। फजूकुल अजाब अभी मा कुंतुम तकफुरून, बस अब लो इस अजाब का मजा चखो अपने इस इनकार हक की पादाश में जो तुम करते रहे हो। देखिए मक्का वालों में दीन की रूह खत्म हो चुकी थी, है तो खुद को कहते तो हजरत इब्राहिम की नस्ल से थे, तो नमाज की शक्ल क्या बदल दी कि जाके वहां तालियां बजाते और सीटियां बजाते। क्या आज उम्मत मुस्लिमा ने भी कुछ ऐसे ही तो नहीं कर लिया, कई ऐसी चीजें जिनको इबादत के नाम पे करते और उसमें तालियां बजाते सीटियां बजाते सर धुनते और इतने मुशरिकाना किस्म के अल्फाज उसमें बोलते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें दीन की सच्ची चीजों को पढ़ने सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने हक को मानने से इनकार किया वो अपने माल अल्लाह के रास्ते में रोकने के लिए सर्व कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कभी गैरों को देखिए अपना दीन फैलाने और इस्लाम से रोकने के लिए कितना माल लगा रहे हैं। फरमाया ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, और वो भी और भी खर्च करते रहेंगे मगर आखिरकार यही कोशिशें इनके लिए पछतावे का सबब बनेंगी, फिर वो मगलूब हो जाएंगे, फिर ये काफिर जहन्नम की तरफ घेर लिए जाएंगे ताकि अल्लाह गंदगी को पाकिजगी से छांट कर अलग कर दे और हर किस्म की गंदगी को मिलाकर इकट्ठा कर दे, फिर इस पलंदे को जहन्नम में झोंक दे। यही लोग असल में खसारा पाने वाले हैं, बैंक करप्ट लोग यही हैं। अल्लाह अकबर, आप देखिए कि ऐसे लोग किधर चले। इस आयतों को पढ़ते हुए मुझे ऐसे लगता है कि जहन्नुम के ट्रैश को जलाने वाली जगह, ट्रैश कहने का, जो चीज गलत खराब है उसको डंप कर दो। अल्लाह सारी जिंदगी लोगों को मौका देता रहता है, ये कर लो वो कर लो, जब लोग नहीं करते अल्लाह ताला पकड़ के उनको आग में डाल देगा। कैसे मुश्किल पड़ी उनके ऊपर। फिर इसके बाद फरमाया कुल लिल्लज़ीन कफरू इन यंतहू युग़फर लहुम मा कद सलफ। ये है इस्लाम का हुसन। ए नबी, इन काफिरों से कह दो अगर अब भी बाज आ जाए तो जो कुछ पहले हो चुका उससे दरगुजर किया जाएगा, लेकिन अगर ये इसी तरह पिछली रविश को दोहराएंगे तो गुज़श्ता कौमों के साथ जो कुछ हो चुका वो तो सबको मालूम है। यहां देखिए आखिरी लम्हे तक लोगों की हिदायत की फिक्र, हर लम्हे यही फिक्र लगी हुई थी कि किसी तरह से लोग बच जाएं। इस्लाम की दुश्मनी कुफर से है, काफिर से नहीं है। मैदान जंग में जाने से पहले भी उनको दावत तौहीद दी जाती थी कि आज भी अगर तुम कलमा पढ़ते हो तो छोड़ दो। तो इसी तरह अल्लाह ताला से लोगों को कहते हैं कि तुम अपनी फिक्र कर लो। आखिरी दुआ आता है वकातिलुहुम हत्ता ला तकून फितना। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो इन काफिरों से जंग करो। ये कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है। मुझे और आपको इसमें कुछ कहने सुनने की जरूरत है। क्यों करो? इसलिए कि यहां तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो फितने से रुक जाए तो आमाल का देखने वाला अल्लाह ताला है, और अगर वो ना माने तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा सरपरस्त है और बेहतरीन हामी और मददगार है। क्या पता चला कि अल्लाह का दीन एक वजह से जंग करने की इजाजत देता है, फितने का खात्मा। और फितना क्या है? परसिक्वेशन, जब मुसलमानों को उनके दीन पर अमल ना करने दिया जाए। और दीन गालिब करना ये है असल में गोल, और इसके लिए आप देखिए कि हर तरह से कोशिश की गई। और साथ ही फरमा दिया वइन तवल्लौ फालम अन्नल्लाह मौलाकुम, फिर अगर वो ना माने तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा सरपरस्त है और वो बेहतरीन हामी और मददगार है। अल्लाह ताला बता देता है कि जो फिरेगा फिर अल्लाह उसकी मदद करेगा। और हकीकत है कि इन आयतों पर अमल करके सहाबा ने हिजरतें की, जंगें की, कुर्बानियां दी, घर छोड़े, क्योंकि उनको यकीन था कि हम अल्लाह के रास्ते में ये सब काम कर रहे हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो कुछ भी हमने इधर अभी तक पढ़ा इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। हम इन आखिरी आयतों को मिलके पढ़ते हैं सब लोग, और पूरे दिल के साथ पढ़िए। कोशिश करें कि आपके अल्फाज जो हैं आपके दिल तक भी पहुंचे। चलिए 29 से, बल्कि इसको सुनते हैं नबी सल्लम पे जो उस वक्त कातिलाना हमले की तैयारियां थी उस पे गौर कीजिएगा और नबी सल्लम की मोहब्बत को महसूस करें। आयत नंबर 29 से औज़ बिल्लाह पढ़िए। औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम।
या अय्युहल्लज़ीना آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا وما كان الله جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا
قرآن کتنا پیارا ہے، جب خالی بھی پڑھتے ہیں تو دل کو خوشی ہوتی ہے۔